मार्गदर्शन।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम मार्गदर्शन के कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली गोमी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम एक बार फिर इस्लामी एकता के महत्व पर चर्चा करेंगे।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर मुसलमान राष्ट्र इन अद्वितीय व अपार संभावनाओं और क्षमताओं के साथ न आंशिक मामलों में बल्कि एक पूरे विषय पर एक साथ हो जाएं, तो इस्लामी राष्ट्र का विकास और प्रगति पूरी हो जाएगी और इस्लामी जगत की एकता के विश्व स्तर पर प्रतिबिंबन से पैगंबर इस्लाम की महानता व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मुसलमानों के बीच एकता हमेशा से इस्लाम के महान बुद्धिजीवियों, विचारकों, सुधारकों और धर्मगुरुओं की एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। मुसलमानों के बीच एकता से अभिप्राय यह है कि मुसलमान एकेश्वरवाद, पवित्र कुरान, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत और उनका आचरण, प्रलय पर ईमान जैसी संयुक्त धार्मिक चीज़ों की रक्षा और इन पर अमल करते हुए मुसलमान आपस में मेलजोल रख सकते हैं और धार्मिक, राजनैतिक, जातीय इत्यादि विभिन्न प्रकार के मतभेदों से बच सकते हैं जो मुसलमानों की कमजोरी का कारण बनते हैं।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के संस्थापक इमाम खुमैनी को वर्तमान युग का बड़ा विचारक और सुधारवादी कहा जा सकता है, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों में एकता के साथ महत्वपूर्ण स्थान के स्वामी थे। उन्होंने मुसलमानों की एकता और एकजुटता को इस्लाम की शक्ति, प्रतिष्ठा और मजबूती का कारण बताया है और वो बहुत अधिक इस्लामी एकता पर बल दिया करते थे। ईरान के इस्लामी क्रांति के ध्वजवाहक वरिष्ठ नेता खामेनेई भी इमाम खुमैनी की भांति इस्लामी एकता पर बहुत अधिक बल देते हैं, जो इस्लामी नियमों और पवित्र कुरान के आधारों से प्राप्त होता है।
मुस्लिम महापुरुषों की नज़र में एकता इस्लाम धर्म की रक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि हम ये कहें कि वरिष्ठ नेता और इमाम खुमैनी ने मुसलमानों की एकता का आह्वान केवल संयुक्त दुश्मनों के मुकाबले में खड़े होने के लिए किया है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस बात से मन में जो बात आती है वो ये कि यदि कोई दुश्मन ना हो तो मुसलमानों के बीच एकता की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे से दूर और विरक्त रहा जा सकता है, जबकि संयुक्त दुश्मनों का अस्तित्व मुसलमानों के लिए एकता के महत्व को कई गुना कर देता है।
इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षाओं में एकता बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है और ये शिक्षाएं मुसलमानों से चाहती हैं कि न केवल आपस में मेलजोल रखें बल्कि गैर मुस्लिम लोगों से भी मांग करती है कि इंसान होने के नाते एक दूसरे से मेल मिलाप रखे। पवित्र कुरान मुसलमानों के बीच एकता पर बल देता है। पवित्र कुरान अपनी प्रकाशमयी आयतों में मुसलमानों को एकता और मतभेद से दूर रहने का निमंत्रण देती है। इस्लाम धर्म कभी भी आपस में मतभेद और दूरियों को स्वीकार नहीं करता। पवित्र कुरान के सूरह आले इमरान की आयत संख्या 64 में आया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और मतभेद से बचो।
पैगंबर इस्लाम, इमामों, धार्मिक नेताओं और मार्गदर्शकों का आचरण भी मुसलमानों के बीच एकता को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त बिंदुओं पर भरोसा करने पर केंद्रित रहा है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता मुसलमानों के बीच एकता और एकजुटता को उन दायित्वों में समझते हैं जो इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षाओं से निकले हैं। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारा हमारे धार्मिक सिद्धांतों में से है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की नज़र में मुसलमानों के बीच एकता और मतभेदों से उनकी दूरी वर्चस्ववादी व्यवस्था की जोर जबरदस्तियों के मुकाबले में सामूहिक रूप से डट जाने और दुनिया में छीने गए अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उचित माहौल पैदा करती है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता पवित्र कुरान की शिक्षाओं के आधार पर बयान करते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और मतभेद से बचो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना हर मुसलमान के लिए एक दायित्व है, किंतु कुरान इसी को पर्याप्त नहीं समझता। जहाँ हमें अल्लाह की रस्सी पकड़ने का आदेश दिया जाता है, उसी के साथ हमसे कहा जाता है कि अल्लाह की रस्सी साथ मिलकर पकड़ो, हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी पकड़ें। ये एकता और साथ मिलने की कार्यवाही एक दूसरा अनिवार्य कार्य है। इस आधार पर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की रस्सी पकड़े। इस प्रक्रिया को उसे दूसरे मुसलमानों के साथ मिलकर मजबूत करना चाहिए। हमको अल्लाह की रस्सी पकड़ने की प्रक्रिया को सही ढंग से पहचानना चाहिए और उसको सही तरीके से अंजाम देना चाहिए।
सूरह बकरा की आयत संख्या 256 में अल्लाह कहता है कि धर्म में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है। मार्गदर्शन पथभ्रष्टता से अलग और स्पष्ट हो चुकी है। अब जो व्यक्ति भी तागूत अर्थात मूर्ति या शैतान का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आए, वो उसकी मजबूत रस्सी से जुड़ गया है जिसके टूटने की संभावना नहीं है, और ईश्वर अधिक सुनने वाला और जानने वाला है। यह आयत अल्लाह की रस्सी पकड़ने का अर्थ हमें बताती है, किस प्रकार से अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा जाए। अल्लाह पर ईमान और शैतान का इनकार करके आज दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमरीका है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता विवरण देते हुए कहते हैं कि आज इस्लामी जगत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि विश्व साम्राज्यवाद पिछली 2 शताब्दियों से इस बात में अपना हित देख रहे हैं कि मुसलमान राष्ट्रों के बीच मतभेद पैदा करें ताकि इन देशों की संपत्ति लूट सकें और मुस्लिम देशों को उन प्रगतियों से रोक दें जो उनका अधिकार है। वरिष्ठ नेता का मानना है कि विश्व शक्तियों ने विज्ञान और तकनीक से जो हथियार बनाए उनका लक्ष्य इस्लामी देशों की लूटपाट करार दिया। वरिष्ठ नेता दुनिया में इस्लामी देशों की रणनैतिक स्थिति और उनमें मौजूद संपत्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि आज मुस्लिम भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से दुनिया के सबसे अमीर देशों में है। आज यूरोप के लिए एशिया का दरवाज़ा, एशिया और अफ्रीका के लिए यूरोप का द्वार, एशिया और यूरोप के लिए अफ्रीका का दरवाज़ा मुसलमानों से संबंधित है। मुसलमानों के पास यह क्षेत्र रणनीतिक क्षेत्र और धरती है जिसमें तेल गैस सहित अनेक प्राकृतिक संभावनाएँ मौजूद हैं जिसकी आज मनुष्य को अपनी सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन आवश्यकता होती है।
इन संभावनाओं के पाए जाने के कारण हर दिन नए रूप में विश्व साम्राज्यवाद इस्लामी देशों पर हाथ डालता रहता है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने अब तक शिया और सुन्नी मुसलमानों को लड़ाकर और मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर मुस्लिम देशों में वर्चस्व जमाने और उनमें अपना प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया है।
मुसलमानों के दुश्मनों पर पैनी नज़र रखने वाले इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर संकेत करते हैं। वरिष्ठ नेता कुछ साल पहले ही अमरीकी राजनेताओं की बात की ओर सबका ध्यान केंद्रित कराते हुए कहते हैं कि जब वो नए मध्य पूर्व की बात कर रहे थे तो उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं था कि वो मध्य पूर्व में कौन सी योजना बना रहे हैं, क्या काम करेंगे कि उसका नाम नया मध्य पूर्व होगा। साम्राज्यवादियों के इस प्रकार के बयान के क्या लक्ष्य हैं? इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मध्य पूर्व की ताज़ा स्थिति देखने के बाद दुश्मनों की योजना समझ में आ जाती है। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि नया मध्य पूर्व अर्थात युद्ध का मध्य पूर्व, आतंकवाद का मध्य पूर्व, द्वेष वाला मध्य पूर्व, रूढ़िवाद वाला मध्य पूर्व, एक दूसरे से युद्ध में व्यस्त मध्य पूर्व, सीरिया में युद्ध है, इराक में युद्ध है, लीबिया में युद्ध है, इन समस्त देशों में आतंकवाद फैल गया है, तुर्की में आतंकवाद है, दूसरे स्थानों पर आतंकवाद है, ये है नया मध्य पूर्व, ये वही चीज़ है जिसका वो प्रयास कर रहे थे। जी हाँ, अब इनकार कर रहे हैं। लेकिन इंसान की आँखें होती हैं, मनुष्य की बुद्धि होती है, देखता है, परखता है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच युद्ध छेड़ दें, देश के भीतरी तत्वों को सशस्त्र करके राष्ट्रों और सरकारों की जान के पीछे डाल दें, ये उनका नया मध्य पूर्व है। अमरीका को पहचानें।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इस्लामी जगत बुद्धि के नाखून ले और इस्लाम को सीधे ईश्वर रास्ते और मुक्तिदाता के रूप में चुने, मजबूती के साथ इस्लाम के मार्ग पर कदम बढ़ाए और संयुक्त दुश्मनों के मुकाबले में जिससे समस्त इस्लामी गुटों को नुकसान पहुंचा है अर्थात विश्व साम्राज्यवाद और ज़ायनिज्म के खिलाफ एकजुट खड़े हो जाएं और एक आवाज़ में नारा लगाएं और एक रास्ते का चयन करें।